evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23310481, and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. आज शनिवार है और आज हम आपके फोन कॉल भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481, और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है.
वार्म वेलकम शरद.
थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक लेकर आ रहे हैं राजेश लेख.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस राइज मॉडरेटली दिस वीक, रैप्स अप्रैल विद 7% सर्ज. Major U.S. stock indices continue to hit record highs as investors see strong corporate earnings. And global crude oil prices jump this week.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह मामूली बढ़त में रहे. अप्रैल के महीने में कुल 7% का उछाल दर्ज हुआ. मजबूत कॉरपोरेट आमदनी से निवेशक उत्साहित. प्रमुख अमरीकी शेयर सूचकांकों में रिकॉर्ड तेजी बनी रही. और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक कीमतों में आया उछाल.
As a disclaimer, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं. मुंबई से अमित है हमारे साथ. आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
थैंक यू मैडम. मैडम, मेरे दो सवाल है एक्सपर्ट से कि क्या जरूरी है कि सपोज 12 लाख से कम यदि सीनियर सिटीजंस का इनकम है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है क्या? और नंबर दूसरा है कि सवाल था कि सपोज 12 लाख के आगे यदि इनकम जाता है 12,100 रुपए, तो उसके ऊपर टोटल टैक्स कितना हो सकता है? थैंक यू.
चलिए अमित, आपका पहला सवाल है कि अगर 12 लाख से कम है तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए फाइल करना जरूरी है. देखिए, ये डिपेंड करता है. मान लीजिए उनका कोई टीडीएस कटा हुआ है टैक्स सेट सोर्स, तो फिर तो फाइल करना होता है. पर अमूमन 12 लाख से कम पर फाइल नहीं. पर हम लोग असूलतन क्या करते हैं कि जिन लोगों को रिबेट मिल रहा है 12 लाख का, उनको टिपिकली रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी साल में आपका एक्सीड भी कर सकता है. तो होगा क्या, कई बार ऐसा होता है कि 2 साल फाइल किया, 1 साल नहीं फाइल किया, फिर उसके बाद अगले साल फाइल किया, तो कई बार आयकर विभाग से नोटिस आता है कि आपने पिछले साल का क्यों नहीं फाइल किया, फिर आपको पुराने रिकॉर्ड्स खोल के बताना पड़ेगा इसलिए नहीं फाइल किया. तो अगर कॉन्टिन्यूटी बनी रहे,
इट्स एडवाइजेबल.
हाँ, तो ऐसा एडवाइजेबल है. दूसरा आपने पूछा कि अगर 12,000 12,100 रुपए रुपए है। तो देखिए 12 लाख का पहले आप रिबेट लेंगे, रिबेट लेने के बाद आप देखेंगे कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। आपको पता होगा स्लैब 5, 10, 15, 20, अब जो न्यू रेजिम की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर ऐसा मेरा मानना है राजेश सोनू के इस बार करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग न्यू रेजिम में आ जाएंगे, क्योंकि ये 12 लाख की वजह से वो इतनी लुभावनी हो गई है। तो उसमें जिस भी स्लैब में होंगे हमें, तो उस स्लैब के हिसाब से वो अपने बाकी के बचे हुए 100 रुपए पर वो टैक्स दे देंगे। जी,
जॉइनिंग अस नाउ फ्रॉम जयपुर इज जितेंद्र। वार्म वेलकम जितेंद्र।
हाँ, जैसे ये एक बात बताइए, जैसे कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा, फ्लैट और लैंड दोनों पकड़ लीजिए, रियल इस्टेट में तो दोनों आएगा
जी,
तो और लंबे समय के लिए
जी,
क्योंकि रहने के लिए तो घर है आदमी के पास
जी,
तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट का फायदा है या रियल इस्टेट में या म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए, अगर सिस्टमेटिक एकदम से जो उसका ईएमआई आएगा वही अगर निफ्टी 50 में लगाते जाए तो कोई हेडेक भी नहीं है, क्या आप सोचते हैं?
देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपका निफ्टी 50 और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आपका तीसरा एसेट क्लास बिल्कुल ही भिन्न है इन दोनों से। तो निफ्टी 50 आपको जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं उनके अंदर निवेश करने का अवसर देता है, और बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जब कोविड आया था तो निफ्टी लगभग 7,500 पे आ गया था, आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंपनीज की ग्रोथ होती है, उनके प्रॉफिट की ग्रोथ होती है, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऊपर जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल बाद निफ्टी नीचे आया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो इसलिए निफ्टी 50 अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स भी लंबे वक्त के लिए अच्छा है, पर आप एसआईपी के माध्यम से आए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने एसआईपी मुझसे बहुत
और लंबा वक्त आप कह रहे हैं करीब,
ये तो खुद ही 10 साल कह रहे हैं, बिल्कुल 10 साल, मुझे लगता है कि 10 साल से कम का नजरिया नहीं रखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं एसआईपी में म्यूचुअल फंड में करते हैं, फिर 1-2 साल बाद एनएवी नीचे आती है, तो मैंने तो एसआईपी को एक नया नाम दिया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो उसको कहते हैं, मैं उसको सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान कहता हूं, क्योंकि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। अब आपका जो पहला पोर्शन था जितेंद्र, वो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट का जो निवेश है बहुत सब्जेक्टिव होता है, कि आपको आप अपार्टमेंट में कर रहे हैं, आप किसी घर में कर रहे हैं, आप लैंड में कर रहे हैं, कमर्शियल में कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में कर रहे हैं, तो ये जनरलाइज करके जितेंद्र नहीं बताया जा सकता। आप हालांकि मैं रियल एस्टेट पर बहुत बोलता हूं और मुझे रियल एस्टेट की काफी जानकारी है, तो कौन सा शहर है, किस प्रकार का एसेट है, वो उसकी आरओआई मतलब वहां पर ग्रोथ पीछे कैसे रही है, मैं जनरली सलाह देता हूं रियल एस्टेट वालों को। आजकल एक नया तरीका मुझे मिला, क्योंकि रियल एस्टेट पे इतने सवाल आते थे, अपार्टमेंट लें, दुकान लें, कोठी बना के उसको रखें लंबे वक्त के लिए, उसको किराए पे दे दें। तो मुझे लगता है जिस तरफ जितेंद्र ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जिस तरफ शहर चल रहा हो, शहर भी चलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जाते हैं, अरे 3 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, आज देखो यहाँ मॉल बन गया, मार्केट बन गई, अपार्टमेंट बन गए। तो जो शहर जिस तरफ चलता हो उसको प्लानिंग कहते हैं, जिस तरफ प्लानिंग चल रही हो उस तरफ लैंड लेके अगर आप उसको सिक्योरली रख सकते हैं तो वो अच्छा होता है। बाकी जितेंद्र दोनों में सीधा कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है। और अगर मैं एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना भी चाहूं तो मुझे उसके लिए स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा कि वो आपकी रियल एस्टेट कहां पर है, कौन डेवलपर है, अपार्टमेंट है, छोटा है, बड़ा है, और पेमेंट टर्म्स क्या थी, उस इलाके की सराउंडिंग्स कैसी हैं, तो इस सब पे आधारित हो सकता है। बाकी मैंने आपको म्यूचुअल फंड और निफ्टी का जरूर बताया, वो दोनों लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी बात है। रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा हमें और गहराई में आप ले जाएंगे बिना किसी डेवलपर का नाम लिए तो मैं बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा, और बहुत कन्विंसिंग ऐसा मुझे लगता है कि मैं जवाब दे पाऊंगा अगर आप मुझे स्पेसिफिक्स बताएं तो।
और अब अगले कॉलर दिल्ली से अमित झा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
हेलो, नमस्कार सभी को।
जी
कोहली सर।
जी नमस्कार
सर, पिछले सप्ताह जो मैंने सवाल आपसे प्रश्न पूछा था थोड़ा इसको स्पष्ट कर दूं सर
जी।
मैंने डॉलर के बारे में मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्रीय जो भी मान लीजिए चीन है, जापान है या मलेशिया है
जी,
पहले हम एशिया देश की बात कर लेते हैं, जो हम इम्पोर्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए हम पाम ऑयल खरीदते हैं, मान लीजिए एक लीटर एग्जाम्पल 100 रुपए का 1 लीटर है, ठीक है सर, और हम बासमती राइस उनको निर्यात करते हैं मान लीजिए सर
जी,
तो 100 रुपए किलो बासमती राइस है, तो हम क्या करेंगे ना सर, गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए अगर आप 1 किलो पाम ऑयल उधर से देते हैं तो उसको आप डॉलर में पेमेंट हमें मत करिए
जी,
पर ना ही हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे
जी,
आप हमसे 1 किलो बासमती राइस ले लीजिए, 1 किलो आप वो क्या कहते हैं पाम ऑयल ले दीजिए, बराबर हिसाब हो गया
जी,
ना हमें डॉलर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ी, पहली बात। दूसरे सवाल सर, दूसरा सवाल ये सर कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे जो दबाव था मार्जिन को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए $70 से लेके $120 के बाद उन्होंने जो इम्पोर्ट करना शुरू किया सर
जी,
तो हाल ही दिनों में कल जो बढ़ोतरी हुई है
जी,
तो क्या उन कंपनियों के मार्जिन पे अब थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले रखी है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। धन्यवाद सर।
देखिए अमित, आपका पहला सवाल जो है वो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें क्या होता था कि आप बदले में सामान के बदले, जब करेंसी किसी जमाने में नहीं हुआ करती थी, एक सामान लिया जाता था, एक दिया जाता था। आजकल के जमाने में अमित इसको संभव नहीं, और इसलिए संभव, आपने जैसे इंडोनेशिया मलेशिया का एग्जाम्पल लेके भारत से ऑयल लें, हम उनको ये दें बासमती दें, अब उनको बासमती नहीं चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए जो मान लीजिए भारत के पास है ही नहीं, या हमें उनसे ऑयल नहीं, हमें कुकिंग ऑयल नहीं, हमें कुछ और चाहिए, तो बार्टर। और दूसरा, वैल्यू टू वैल्यू को अलाइन करना भी अमित बहुत कठिन है। आप ये तो छोड़िए, मैं राजेश और सोनू के इजाजत से एक एग्जांपल देना चाहूंगा। भारत और रशिया ने जब रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया तो ऐसा हुआ कि उन, क्योंकि अभी भारतीय रुपया 18-20 कंट्रीज में चल रहा है, उनके पास इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा अब हम इन रुपए का क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे हो, ये तो बाकी जगह तो चलते नहीं है, तो आप तो बहुत इसको अलाइन करना आजकल के युग में बहुत कठिन है, और डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड मेजर किया जाता है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आपकी आवाज मैं उम्मीद करता हूँ, आपकी आवाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक भी पहुंच रही होगी, हो सकता है आपके सुझाव का कोई संज्ञान लेके ऐसा कुछ कर पाए। ऐसा करिए ना अमित, पहले आप किसी दुकान पे इसको हम यहीं पर ट्राई करते हैं, कि जैसे आप दुकान पे कुछ लेने गए तो आपने रुपए की जगह उनको कोई सामान बोलिए कि ये ले लें, तो बहुत कठिन है आजकल के जमाने में, बहुत कठिन है। आपने दूसरा पूछा ओएमसीज का, बिल्कुल देखिए, कीमत बढ़ाने का जो कमर्शियल सिलेंडर पे कीमत बढ़ाने की घोषणा हुई है, इसीलिए की गई है क्योंकि उनके जो मार्जिन्स थे वो बहुत प्रेशर में थे, तो कुछ राहत तो उनको मिलेगी। अब देखिए कितनी राहत मिलेगी, क्या आगे और भी बढ़ेंगे घटेंगे, ये सब निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूस पर, कि वहां पर कितनी जल्दी ये जो स्टेलमेट बना हुआ है ये वहां पर हटता है कि नहीं हटता। तो बारीकी से नजर बना के रखिए, परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और पूरे विश्व में अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि भारत में अच्छी नहीं है, पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बुरी हालत है। अमेरिका में मुझे पता लगा कि $5 प्रति गैलन अब एनर्जी प्राइसेस हो गई है, 3 से 4.6 एक गैलन में लगभग 4.25 लीटर होते हैं, वो हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो गैसोलीन बोलते हैं, तो वहां भी बढ़ रही है। तो देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है उसको खुद भी कीमतों से जूझना पड़ रहा है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कुछ राहत मिली होगी, पर मुझे लग रहा है लोग अपनी राहत की इस बार ज्यादा उनको चिंता है कि कहीं, हालांकि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अभी आम आदमी के ऊपर नहीं डाला, पर अगर मुझे लगता है कि $120 या उससे ऊपर रहता है तो कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
रत्नाकर joins us now from Mumbai. A warm welcome, Ratnakar.
हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल ही ऐसे ही बारे में है कि जागतिक स्तर पर पेट्रोल डीजल और गैस की पोजीशन ठीक नहीं है
जी,
इसलिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर का जो वृद्धि हो गई है
जी,
वो बहुत हो गई है
जी, जी।
इतनी होनी नहीं चाहिए थी, थोड़ी कम होनी चाहिए थी
जी।
तो आम आदमी के लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं उनका डेली लंच होटल में होता है
जी,
तो ऐसे लोगों के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसके लिए आपकी क्या राय है, ये बढ़ोतरी ऐसी हो जाएगी तो कैसा आदमी कर सकता है। और दूसरा सवाल है कि ऐसे हालत में आगे की रणनीति, यानी रिटेल इन्वेस्टर ने ये जो नेक्स्ट वीक में कैसा शेयर मार्केट का प्रोग्रेस रहेगा।
देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स पे रेट बढ़ाया गया उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो ठीक है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरर्स हो गए, क्लाउड किचन्स हो गई, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, उन सब की कॉस्ट बढ़ेगी, पर ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है कि काफी इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर था, बल्कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ सिलेंडर पैकिंग कंपनीज लॉस में भी थी, तो उस लॉस को किसी तरह रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये भी नजर आता है कि कुछ डोमेस्टिक सिलेंडर, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित है, तो कुछ उसका लोड भी शायद कमर्शियल पर डाल रहा है। बिल्कुल देखिए, एक वैश्विक समस्या है, इस सबसे हम सबको मिलकर जूझना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकारी तंत्र से भी यही आती है कि एक ऐसी परिस्थिति है जो असाधारण है। दूसरा, आपने पूछा अगले हफ्ते मार्केट की पोजीशन कैसी रहेगी, मार्केट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर बनाए हुए, मार्केट क्रूड ऑयल पर नजर बनाए हुए, मार्केट जो है रुपए और डॉलर पर नजर बनाए हुए, और मार्केट FII सेलिंग पर बनाए हुए, और आजकल तो मार्केट ने अभी देखा आपने बीच बीच में उठती भी है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर 4 के और एनुअल रिन्यूअल, उस पर भी नजर बनाए हुए। तो ये सब फैक्टर्स रत्नाकर जी कंट्रीब्यूट करेंगे। इस समय इतनी अनिश्चितता मार्केट में फैली हुई है कि कुछ भी लंबे क्या मिड टर्म में शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वी आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एक दिन एक एक दिन हम करके मार्केट में ले रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। तो आप समझ रहे हैं, आप तो बहुत वेटरन है, आप बहुत तजुर्बेकार है, मुझे लगता है आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ पाएगा।
आपने बात की मार्केट की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह सेंसेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा। कल अवकाश के कारण चार दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के बीच वार्ता में प्रगति न होने, कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बने रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली जारी रहने और यूएस फेडरल रिजर्व का रुख कड़ा रहने के बीच निवेशकों की धारणा सतर्क बनी रही। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.3% की वृद्धि से 250 अंक बढ़कर 76,914 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 0.4% की तेजी से 100 अंक बढ़कर 23,998 पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में प्रदर्शन और भी बेहतर था। इस सप्ताह के दौरान मिड कैप 100 सूचकांक 0.7% बढ़ गया और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 2.5% का उछाल आया। मासिक आधार पर बात करें तो मार्च के महीने में आई तीव्र गिरावट से अप्रैल के दौरान आंशिक रूप से उभरते हुए निफ्टी में 7.5% का उछाल आया और सेंसेक्स में 6.9% की वृद्धि दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की कमजोरी दर्ज करता हुआ 94.91 रूपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। आप पहले ही कह चुके हैं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच और लेट्स होप कि जो अप्रैल में उछाल आया है उसी का अनुसरण शायद
जी वो जारी रहे, उम्मीद तो यही करते हैं।
और अब दिल्ली से लेते हैं अगले कॉलर, रवि आपका स्वागत है, सवाल पूछें। रवि से हमारा संपर्क टूट गया है।
सो व्हाट इज देयर इन द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट दैट विल दैट कैन लिफ्ट कैन बी लिफ्टेड अप द फोर रीजंस दैट वी हैव गिवन प्रोग्रेस इन यूएस ईरान टॉक्स एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूड एफआईआई सेलिंग एंड हॉकिश टोन ऑफ द फेडरल रिजर्व दे ऑल सीम टू बी स्टेइंग देयर सो व्हाट कैन लिफ्ट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट यू मेंशनड अ व्हाइल बैक।
Since you've already spoken on most of the factors, I think the only other thing remaining in this is the corporate results, because some of the results of some of the companies have been fantastic and unexpected. So I think those companies, if you're getting at lower valuations, that's a very attractive proposition, because you get something which was trading at a very high price earlier, whereas because of this sentiment it is down. So I think this gives investors a very good opportunity to get into that stock.
So value buying se aapko lagta hai bazaar ko bal milega.
Ji, joining us from Noida is Manoj. A warm welcome, Manoj.
Yeah, thank you for taking my question. Actually, I'm running my company since 2011. It's a 15-year. It's a sole proprietorship company.
Yeah.
And I just wanted to explore if I can change. Somebody was suggesting that we can convert this company into HUF company, or there is some notion which is called OPC. So can you guide me, if I get some tax benefit or some benefit, maybe tax or maybe some other, then it would be really helpful for me.
Mr. Manoj, that's a very interesting question. In fact, Rajesh and Sonu, that's a very different question from the kind of questions we get. And I think this is the beauty of Market Mantra, where business, economics, finance, stock markets, taxation, practically the whole spectrum of commerce, shall I say. I think Manoji, you're carrying on in proprietorship, so as you're aware, there's no difference between proprietor and the proprietorship as far as taxation is concerned, since your question is focused on taxation. Well, conversion to HUF is not possible. I don't think that would be possible, although I don't know your family structure, because HUF means then you will have to form an HUF and you should have a family, which I'm sure you have. Then you have to transfer the whole business to the HUF. You cannot convert your proprietorship to HUF by law. So that's the first part. Then you spoke of OPC. OPC is a one person company. It has been launched because in some of the Western countries, this concept used to be there. But in India, it hasn't been very, very popular because an OPC is a company which can be floated with only one shareholder. Normally in a company, there should be minimum of two. So I think taxation wise, I don't really see any major advantage, but normally such decisions, Manoji, I'm coming to a very important part of the answer, which you should be listening to, that the decision to convert a business to a partnership or an LLP or a company is dependent on the scale that you are functioning on. If your scale is growing, if you're catering to high profile customers, if you want to reflect yourself as a larger organization, mm-hmm. you know, you want to make a very positive impression, then maybe go for a private limited. I think you should consider LLP instead of OPC or HUF. I think you missed mentioning LLP. LLP is becoming very popular, and the number of LLPs floated across the country have been crossing a record. So therefore, Manoji, although these questions need to be answered by looking at a lot of parameters of your business, since we do not have the specifics, I would advise you to consider LLP.
So हमारे जो श्रोता जिनको ना पता हो, आप LLP का full form
limited liability partnership कहते हैं. ये proprietorship यानी कि partner या partnership और company के बीच का एक विकल्प निकाला गया है. ये भी companies act के 2013 के अंतर्गत आता है और इसमें limited liability होती है. बहुत ही interesting discussion है. कभी मौका लगा तो इसपे खुल के बात करेंगे. और बहुत ही आज ये मैं बहुत खुश हूँ इस सवाल से, क्योंकि ये बड़ा हटके सवाल है और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है उन्होंने पूछा. मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं को जो अपना व्यवसाय करते हैं उनको ये लाभ पहुंचाएगा.
और नोएडा से ही है हमारे अगले कॉलर पीके शर्मा. आपका बहुत बहुत स्वागत. सवाल पूछे.
जी धन्यवाद. गुड इवनिंग. मेरा प्रश्न कोहली साहब से ये है कि जैसे विदेश में हमारे जो बच्चे रहते हैं
जी,
और फिर भारत की इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है अलग से निफ्टी 50 या किसी म्यूचुअल फंड में
जी,
तो उसका जो टैक्सेशन रहेगा जब वो यूनिट्स रिडीम करेंगे
जी,
तो क्या उनको टैक्स फॉर एग्जाम्पल सपोज जर्मनी में है तो जर्मनी में भी देना पड़ेगा और भारत में भी देना पड़ेगा, दोनों जगह देना पड़ेगा या एक जगह?
बहुत अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा सवाल है शर्मा जी. भारत के ज्यादा देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, इसको DTAA कहते हैं. इस अग्रीमेंट के अंतर्गत आप जब एक देश में टैक्स देते हैं तो दूसरे देश में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं. और आपको मैं ये भी बता दूं कि आयकर अधिनियम के अंदर एक ऐसा सेक्शन भी है जिसमें भारत ने अगर किसी देश के साथ ये DTAA नहीं भी किया है तो आप वहां टैक्स देके आए हो, आपके ऊपर दोबारा भारत में टैक्स लग रहा है, तो आप उस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं. तो अगर जिस भी देश में वो शर्मा जी हैं उनके साथ मुझे पूरा यकीन है DTAA है, तो आप उस DTAA का सहारा लीजिए. और बिल्कुल भी आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा. एक बार को तो लगेगा, पर आप दूसरे देश में जहां पर आप बाद में दे रहे हैं उसमें आप, तो अगर ये वहां के रेजिडेंट्स हैं तो जो भारत में टैक्स देंगे उसका ये यूएस में या जिस भी देश में है वहां पर उसका क्रेडिट ले सकते हैं. भारत और यूएस का भी DTAA है. मुझे नहीं पता कौन से देश में है. जर्मनी की आपने बात करी, जर्मनी के साथ भी है, जर्मनी में उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं.
Moving on, the benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq Composite closed at record highs yesterday as investors weighed strong corporate earnings and a dip in crude oil prices. The Nasdaq Composite Index climbed 0.9% to 25,114 and the S&P 500 added 0.3% to 7,230, while the Dow Jones Industrial Average dipped 0.3% to 49,499. For the week, the Nasdaq advanced 1.1%, S&P 500 gained 0.9%, and the Dow added over 0.5%. Sharad, we were talking about the corporate earnings in India, and it seems that is also attracting the investors in the US as well, as they seem that the corporate earnings are going to go up and that there is going to be a dip in the crude oil prices. Now, how will all this play out in the coming week?
I think things in the US as far as on economic parameters, Rajesh,
is it short-lived?
Yes, okay. Yes, you said it all in one word. Because I think there is a couplet in Urdu, Dil Behlane Ko Ghalib Khayal Achha Hai. So I think the economic parameters do not seem to be favoring that. Because a country which is in war, you know, cannot be celebrating in stock market. So I have a feeling that
and ye hamesha se dar tha ki unke margins hit honge companies ke, so maybe lagged effect ke saath शायद हमें,
हाँ वो लैग तैयार है. आपको जब ये युद्ध समाप्त होगा, कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त होता है तो क्या खोया क्या पाया वो बाद में पता लगता है. जब युद्ध चल रहा होता है तो इन द रश ऑफ ब्लड आप बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, ऐसा मुझे नजर आता है.
योगेश है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर. योगेश जी सवाल पूछिए.
हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे इंडिया में SIP को बहुत ज्यादा जोर शोर से बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को कि SIP कर दो भूल जाओ, SIP कर दो भूल जाओ, तो क्या SIP बाहर देशों में भी SIP करी जाती है, क्या उसमें भी उसको SIP बोला जाता है, और अलग अलग कंट्रीज में से किस नाम से या किस मेथड से इन्वेस्ट करने के तरीके बोला जाता है?
देखिये योगेश, SIP स्वयं ही एक निवेश करने का तरीका है। इनफैक्ट मैं तो SIP का प्रयोग खाली म्यूचुअल फंड्स के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो SIP का प्रयोग गोल्ड सिल्वर में निवेश करने के तरीके को बोलता हूँ, जैसे शेयर्स में भी। SIP मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्ट, और मैंने तो SIP का एक नया नाम रखा, अभी मैं जिक्र कर रहा था, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आपको सब्र होना चाहिए। देखिए SIP का, बाकी देशों में भी SIP होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, SIP कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। SIP का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और अलग अलग लेवल्स पे एंटर करें, तो ये तो हम किसी भी देश में कर सकते हैं, नाम भले कोई भी हो। तो SIP बाकी देशों में भी है, आपके सवाल का पहला जवाब। दूसरा, इसको इसलिए अग्रेसिवली बेचा जाता है कि यह हाल में बहुत ही कारगर तरीका निकला है, क्योंकि एक तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी इनकम से पैसा जाता रहता है, तो आपको पता नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा यह कि लंबे वक्त के लिए जाता है, जो कि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा असूल है, जिसने भी
पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी कन्वीनियंट
है, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाइए आप 10 साल तक अगर लेके। और मैंने देखा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग SIP की बात कहता हूं संक्षेप में, कि 10 साल के लिए अगर आपने करी, देखिए 10 साल में कोविड भी आ गया, अगर मैं 2019 में घुसता, कोविड भी आ गया, ये युद्ध भी आ गया, सरकारें भी बदली, आपने सब कुछ अपने पेट में डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट जो थी एक डायरेक्शन के हिसाब से चलती गई। तो इसलिए SIP योगेश अच्छा है, इसको किसी वजह से बेचा जाता है, और आप भी अगर लंबे वक्त तक रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे।
और शहनाज हमारी अगली कॉलर है मुंबई से। शहनाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
जी गुड इवनिंग,
जल्दी से पूछे।
शरद जी, शरद जी मेरा सवाल था, मैंने 26AF फाइनेंशियल ईयर 25-26 का चेक किया, तो विद द सरप्राइज मेरे 26AF में एक 18 लाख की कार रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा। और वो भी 18 लाख से मेरे पेन से दिया, मुझे मॉनेटरी कुछ लॉस नहीं है, ओवर एंड अबव दैट डीलर को भी 18,000 दिया है, कुछ 1% देना होगा, क्या देना होगा
जी।
इसके आगे मैंने डीलर को और इनकम टैक्स ग्रीवेंसेस में मेल डाला, लेकिन दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आगे चल के मुझे क्या करना है, या तो कार क्लेम करूं, या तो यहां से उसको हटाऊं, कैसे, वो आप प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। ये पर्पसली हुआ या बाय एक्सीडेंट, दैट ऑल्सो यू लेट मी नो। अब मैं वॉल्यूम बढ़ा करती हूँ, उसके बाद आप बोलिए। थैंक यू सो मच, बाय टू ऑल।
अच्छा, देखिए AIS इज एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर द, मैंने इसका नया नाम रखा आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपके पूरे ट्रांजैक्शन बता देता है। उसमें आ रहा है, तो उसमें शहनाज एक फीडबैक देने का ऑप्शन होता है, आप AIS खोलेंगे अपना लॉगिन करके पोर्टल पर, तो उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं, जहां पर अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप बता सकते हैं। पर आप कह रहे हैं आपने ट्रांजेक्शन किया है, TDS भी कटा है, तो वो तो वहां रिफ्लेक्ट होगा ही। अगर असल में आपने गाड़ी नहीं खरीदी तो आप फीडबैक के जरिए वहां पर बता सकते हैं, और थोड़ा सा और समय होगा, अगली बार दिक्कत आएगी तो आप दोबारा पूछिएगा, हम इसको एड्रेस करेंगे।
Global crude oil prices declined yesterday after Iran sent its latest proposal to the United States to end the conflict. Later, US President Donald Trump told the media that he's not satisfied with the proposal. Meanwhile, Tehran has continued to restrict access to the Strait of Hormuz, while the US Navy is tightening controls on Iranian crude exports. Yesterday, Brent crude July futures settled 2% lower at $108.17 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures declined nearly 3% to $101.94 per barrel. However, Brent jumped 2.7% and WTI zoomed 8% over the week. However, Brent's June contract touched $126.41 per barrel on Thursday, its highest level since March 2022, before the contract expired. So, is this rate going to have adverse repercussions on the Indian economy?
Well, obviously, because 87% of our crude we are importing, so obviously it is going to have a pressure on the economy.
समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी।
Thank you very much.
Thank you, Sharad, for being with us.
My pleasure.
And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices rise moderately this week. Rats April with 7% surge. Major U.S. stock indices continue to hit record highs as investors see strong corporate earnings. And global crude oil prices jump this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Yeah. I'll take questions.